तो प्रश्न अर्जुन का क्या है? नियत आत्म भी ही, जो आत्म भी माने स्वयं अपने आप को तैयार करता है, रेडी होता है परीक्षा देने के लिए, फिर उस वक्त आपको पाएगा कैसे, वो रास्ता तो बताओ। तो इसके लिए भगवान ने पहले बताया, एक बात बताई जनरल, अंत काले च माम एव स्मरन। अंत काल जब समय आए उस वक्त अगर वो मेरा स्मरण कर ले, त्यजम देहम, जब देह को छोड़ता है, देह को छोड़ता है, इसलिए कहा कि ये सब जानते हैं कि जब आदमी संसार से जाता है तो ये शरीर यहीं छोड़ के जाता है, कोई शरीर आज तक साथ लेके नहीं गया। तो इस शरीर छोड़ते समय अगर भगवान कहते हैं मेरा चिंतन कर ले तो मेरे पास आएगा। फिर जनरल रूल बताया, यम यम वापिस स्वभावम त्यजते अंत तम तम एवेति कौनते सदा तदभाव भाव, नहीं तो जिसका ध्यान करेगा वहां जाएगा। अंत मति सो गति, अब अंत में किसका ध्यान होगा? जो सारा जीवन अभ्यास करेंगे उसी का अंत में ध्यान होगा, ये तो नेचुरल है ना। जिस चीज का सारी उम्र हमने ध्यान किया वही अंत में याद आएगा। तो इसका मतलब अंत में पास होने के लिए अभ्यास हमको अभी से करना पड़ेगा। ये अभ्यास हम करेंगे तब वो याद आएगा ना। तो फिर उस वक्त नहीं याद आए तो क्या करना चाहिए, माने अर्जुन पूछता है। तब भगवान ने एक और श्लोक बोल दिया, तस्मात सर्वेशु कालेशु, इसलिए हर समय मेरे को याद करो, पता नहीं वो समय कम आ जाए। इसलिए ये बहुत अच्छा एक भगवान ने महावाक्य है भगवद गीता का, तस्मात सर्वेशु कालेशु, हर समय उठते बैठते जागते सोते अपने काम को करो हाथ से, लेकिन याद करो मेरे के, हथ हाथ में कम यार में, हथ क्या कहते हैं, हा कर हथ काज में दिल, सुमरण भगवान का हो, हाथ काम में हो लेकिन सुमरण भगवान का हो। सर्वेशु कालेशु माम अनुसमर, ये अनुसमर के ऊपर पहले थोड़ी देर के लिए बोलते। अनुसमर का मतलब पता है क्या है? जिन जैसे पहले महात्मा स्मरण करके गए ऐसे करना, अपना नया तरीका मत बनाना। अनु का अर्थ होता है किसी के पीछे चलना, अनुकरण करना का मतलब जो पहले रास्ता बना के गए उसी रास्ते से चलो। इसलिए इस धरती के ऊपर भगवत प्राप्ति के लिए पहले से कुछ रास्ते बने हुए हैं जिनको बोलते हैं संप्रदाय, और ये संप्रदायों में परंपरा चलती है। परंपरा का मतलब भगवान से शुरू होती है और आज तक वो परंपरा चलनी चाहिए। उस और ये शास्त्र संप्रदाय विहीन मंत्र निष्फल, अगर संप्रदाय से आया हुआ आपके पास मंत्र नहीं है जपने का तो आपका सारा प्रयास निष्फल है, कोई फायदा नहीं है। इसको ऐसे समझ लीजिए, आपने सिलेबस तो पढ़ा नहीं यूनिवर्सिटी जिसमें इम्तिहान देना है, परीक्षा देनी है, लेकिन और कुछ पढ़ के उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वो आप अलोही नहीं है उसमें जाना, पढ़ना तो दूर की बात है अलोही नहीं है। ये ऐसे समझ लो कि सिलेबस जो है जो उस यूनिवर्सिटी ने दिया है जिसके प्रोफेसर निर्धारित है वो जब पढ़ाएंगे और उन्हों की शिक्षा की प्रणाली जब अपनाओगे तभी उस एग्जाम में बैठ सकोगे। ऐसे ही है ना, अपनी मर्जी से तो कोई नहीं कोर्स बना सकता। तो अनुस्मरण का अर्थ यह है कि जैसे पहले भगवान ने कई जगह कहा है इससे पहले बहुत इस रास्ते के ऊपर चल के मेरे पास आए हैं, तो जो पहले इस रास्ते पे चल रहे हैं उनके पीछे चलना चाहिए, अपना अलग रास्ता। ये सबसे बड़ी परेशानी आजकल क्या है इस दुनिया में, हर एक अपना नया मत नया पंथ खोल रहा है। जब से सिस्टम चला आ रहा है उससे हट के अपना एक नया रास्ता खोल, कोई भी इस वक्त चलने वाला पंथ 500 साल 400 साल से पुराना नहीं है। उससे पहले क्या दुनिया बंद थी क्या, नहीं चलती थी क्या? तो वो परंपराएं कहां गई जो पहले से चलती आ रही थी। ये परंपरा तो ब्रह्मा जी ने शुरू की, जिसने ये सृष्टि पैदा की उसने परंपरा शुरू की। और ब्रह्मा जी ने नारद को सिखाया, नारद ने व्यास को सिखाया, और व्यास के द्वारा ये सारी पद्धति आती है। इसलिए जो भी साधु बैठ के सत्संग करता है उसको बोलता है ये व्यास है, ये व्यास गदी के ऊपर बैठा है। इसका मतलब जो व्यास ने कहा है वो बोलेगा, अगर व्यास ने कहा है वो नहीं बोलेगा इसका मतलब उसका कोई वो उसका सिलेबस ही गलत है, वो उस वो किताब ही नहीं लाया है जो व्यास ने लिखा है, वो व्यास के किताब से नहीं बोल रहा है, अपनी मर्जी से बोल रहा है, तो समझ लो कि उस एग्जाम के लिए वो किताब बेकार है, उस किताब की कोई वैल्यू नहीं है। ये बात ठीक तरह समझने में आनी चाहिए। तब भगवान कहते हैं अनुसमरण, वो समरण नहीं कह रहे, अनुसमरण इसलिए कहते हैं कि जैसे पहले स्मरण किया गया है उस रास्ते के ऊपर चलना है। और ये परंपराएं भगवान से शुरू हुई है, और फिर आगे चल के भगवान ने कह दिया ठीक है मेरा चिंतन ऐसे कर सकते हो सीधे हरे कृष्णा जप के तो भी अच्छा है, नहीं तो बहुत से लोग मेरे शब्द रूप का चिंतन करते हैं, उच्चारण किसका करते हैं, बोला ओम इति एक अक्षर ब्रह्म, इस एक अक्षर के लिए इस पूरे अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म है, आठवें अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म इसलिए है क्योंकि इसके अंदर है ओम इति एका अक्षर ब्रह्म। किसी भी अध्याय का गीता में नाम नहीं है असली, जहां महाभारत में गीता भीष्म पर्व में 25वां अध्याय से लेकर 43 अध्याय तक है किसी अध्याय का कोई नाम नहीं है, अध्याय 45, 46, 47 ऐसे। लेकिन साधु महात्माओं संतों ने जो विशेष चीज उस अध्याय में देखी सार वो एक नाम दे दिया और वो नाम प्रचलित हो गया। तो यहां जो ये ब्रह्म अक्षर है, ओम क्या है, बोला ओम ब्रह्म अक्षर है। अक्षर का अर्थ ये होता है जो कभी नाश नहीं होता है। और दूसरी जगह भगवद गीता में भगवान ने कह दिया वेद्यम पवित्रम ओमकार, वेदों में जो पवित्र ओमकार है वो मैं हूं। वो क्या है, बोला वो मेरा स्वरूप है। कैसा, बोला शब्द रूप है, शब्द रूप है। इस शब्द रूप को आप ऐसे समझ लीजिए ना, जैसे आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपका नाम नहीं है, लेकिन किसी को कोई पूछेगा भाई भगवान का, भाई भगवान से बात करनी है तो वो नंबर देगा, बोला ये नंबर मिलाओ भगवान मिल जाएगा। तो वो नंबर जो है ऐसे, ये ओम मानो के नंबर है, अ ओ म अर्ध मात्रा, ये ओम भगवान का एक सिंबल है, शब्द इसको बोलते हैं, शब्द रूप भगवान का है, भगवान का शब्द रूप है। तो भाई अब नंबर कैसे बोलेंगे, बोलेंगे मुख से 9837055 समथिंग लाइक दैट, ये शब्द रूप है और इसको जैसे फीड करोगे तो सामने से आदमी बात करेगा, और उस आदमी का नाम पूछते उसकी शक्ल आपको याद आती है कि नहीं आती। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं ये टेक्निक सुनिए, बड़ा मजेदार बोलते हैं। बोला एम ओम इति एका अक्षर विहारण, ओम इति एका अक्षर ब्रह्म, ये जो अक्षर ब्रह्म है ना ओम, उसको विहारण मतलब उसको जोर से उच्चारण करो। विहारण का मतलब है ओ, विहारण का मतलब जोर से उच्चारण करो। बोला उस उच्चारण करें तो ध्यान किसका करें, तब देखो क्या बोलते हैं, मां मनुसमर। जब ये अर्जुन को कृष्ण ने कहा ना, तब कृष्ण को अर्जुन को ऐसे सर के ऊपर हाथ रखा कंधे के ऊपर, ओम का उच्चारण करो, ध्यान मेरा करो। कृष्ण का मां मनुसमर, जैसे पहले महात्मा लोग ऐसे ब्रह्म का उच्चारण चिंतन करते थे तो वो स्मरण मेरा करते थे, क्योंकि ब्रह्म मेरे ऊपर आधारित है। ये 14वें अध्याय में आएगा क्या, अहम ब्रह्म अहम प्रतिष्ठा, अहम ब्रह्म की प्रतिष्ठा मेरे ऊपर आधारित है, ये 14वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, याद है किसी को, 4 का आखिरी, ब्रह्म प्रतिष्ठो हम अमृतस्य शाश्वतस्य, ये सदा के लिए रहने वाला है और मैं ब्रह्म का आधार हूं, ब्रह्म मेरे ऊपर टिका हुआ है, ये भगवान बोलते हैं, श्री कृष्ण जब बोलते हैं ब्रह्म मेरे ऊपर टिका हुआ है, तो यह कहते हैं उच्चारण तो ओम का करो लेकिन स्मरण मेरा करो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि ओम का उच्चारण करें तब आपके सामने कृष्ण का चित्र आना चाहिए, ध्यान उसका आना, माम ध्यायन तो उपासते, ध्यान मेरा आना चाहिए, क्योंकि ओम मेरे को, ओम नंबर आपने मिलाया है तो मैं बात करूंगा, वो मेरे को आपने मेरे से बात की है, मुझे बुला रहे हो आप। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म विहारन माम अनुसमरण सत्यजम देहन, और जब वो शरीर छोड़ता है ऐसे मेरा ध्यान करता है, और वो भी किसी से सीखा होगा तब, तो हे पार्थ वो वापस मेरे पास आता है, उसको फिर कहीं भटकने जरूरत नहीं, वो पास हो जाएगा, उसके पास होने में कोई भी देयर इज नो डाउट, ही विल डेफिनेटली पास। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे एग्जाम में पास हों? सबका इससे क्या इच्छा होती है कि बच्चों को एग्जाम में पास होना चाहिए, ये इच्छा होती है ना सब पेरेंट्स की, नहीं होती है? हाँ जी, क्या बोलिए? तो बच्चे स्कूल में जाते हैं तो आप कितना प्रयास करते हैं कि ये पास होना चाहिए ना, ऐसे हमको भी तो ये एग्जाम पास करना पड़ेगा ना, जो अंत समय का एग्जाम है ये हमको पास करना चाहिए ना, और हम अगर पास नहीं करते हैं तो फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे तो फिर दोबारा तैयारी करें, आपको मतलब है? जो बच्चा फेल होता है एक साल पूरी तैयारी दोबारा करना पड़ती, अगेन ही हैज टू गो फॉर थ्रू वन ईयर, और फिर जब तक वो पास नहीं होता है तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी परीक्षा है, और ये परीक्षा हमको पास कैसे करनी है वो आठवें अध्याय में समझाया जा रहा है। अब परीक्षा का टाइम कितना होता है, सारा किताब कभी पूछा है क्या? परीक्षा में सारा किताब नहीं पूछते, एक ही कोई दो चीजें पूछते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि इसको आता है कि नहीं आता है, और उसमें टाइम बहुत कम होता है, पढ़ाते साल है, और परीक्षा एक वन ईयर स्टडी एंड एग्जामिनेशन हाउ मच टाइम? 3 आवर्स। कितना परसेंटेज है साल का 3 आवर्स? बहुत कम है ना, और देखने वाले को कितना टाइम लगता होगा उसको, 3 घंटे के पेपर को वो 30 मिनट में देख लेगा, ठीक तरह से देखेगा तो, और आसानी से देख सकता है ना। तो ऐसे हमारा जो परीक्षा अंत में होती है उसमें टाइम कितना लगता है, बोला फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टाइम है सिर्फ, उस वक्त आपका उच्चारण क्या होता है उसके ऊपर आपने सारे जीवन की तैयारी का निर्भर, उसके ऊपर सारी जिंदगी कुछ कमाया उसका उस वक्त में हिसाब कोई नहीं पूछेगा, क्या आपके पास बैंक बैलेंस है ये भी उस वक्त कोई नहीं पूछेगा, तिजोरियां भरी रह जाएंगी, गाड़ियां खड़ी रह जाएंगी, कोई भी इनमें से उस वक्त नहीं पूछी जाएगी चीज, उस वक्त क्या पूछा जाएगा वो यहां सिखाया जा रहा है, क्या उस वक्त आपके मुख से भगवान का नाम उच्चारण होता है कि नहीं। ये बहुत सीरियस एक अपने जीवन में बैठ के थोड़ा सोचना चाहिए कि, और इसका अनुभव पता है आपको जीवन में कैसे होता है, अचानक चलते हुए पांव फिसल जाए उस वक्त आपके मुंह से क्या निकलता है समझ लो कि अंत समय वही निकलेगा, प्रायः क्या निकलता है पता है? मेरी मां, ऐसे होता है ना, मां बोलता है ना लोग, क्यों बोलते हैं मां? क्योंकि हर दुख सुख में मां ने हमारे को सहारा दिया था, तो जब ऐसी स्थिति आती है तो मां का नाम निकलता है, निकलता है कि नहीं निकलता है? ऐसे जब हम अनुभव करेंगे कि जन्म जन्मांतर से भगवान हमारे हृदय में मित्र बन के बैठे हुए हैं और वही हमारा सहारा है और उसका नाम, उससे प्रेम करने लगेंगे तब उसका नाम निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। इस दुनिया में उसी का नाम मुख से निकलता है जो, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसने हमारा पहले सहारा दिया है, उसी का नाम निकलता है। वैसे प्रायः मेरे बाप बहुत कम लोग कहते हैं, मेरी मां सबको याद आता है, नहीं ये आप देख लीजिए लोगों का नेचुरल मूड से क्या निकलता है जब अपन अचानक कुछ ऐसे कुछ हो जाता है तो, और भक्तों को मैंने देखा है अचानक ऐसे होता है, अरे ये कृष्ण ऐसे हो जाए, अचानक ऐसे हड़बड़ा के भगवान का नाम निकल जाता है। एक हमारे साथ भक्त उस वक्त में सिंध में गाड़ी चला रहा था, अमेरिकन था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, आया हमारे पास रो रहा था, मैंने बोला कि चोट है दर्द है? बोला नहीं दर्द तो चला जाएगा महीना दो महीना, पट्टा करेंगे दर्द चला जाए, फिर मेरे को रोना क्यों है? बोला उस वक्त मेरे को भगवान याद आया ही नहीं, मर गया होता तो क्या होता। ही वॉज कंसर्न्ड कि भाई मैं आज 25 साल से अभ्यास कर रहा हूं और जब एक्सीडेंट हो रहा था उस वक्त मेरे को भगवान याद नहीं आया और सामने गाड़ी वाले के ऊपर गुस्सा आया, तो मरने के बाद तो मैं वही ड्राइवर बन के वापस आता ना, तो मेरा जीवन तो बेकार हो गया ना, 25 साल की कमाई बेकार चली गई। तो बड़ा दुख कर रहा था कि उस वक्त भगवान का नाम याद आएगा कि नहीं आएगा, ये जीवन में प्रैक्टिस करते करते पता लगेगा। कभी अचानक दर्द हो जाता है तो क्या मुख से निकलता है देख लो, कोई अचानक ऐसी समाचार आता है तो मुख से क्या निकलता है देख लो। ये आपके छोटे छोटे एग्जाम है, जिसको क्या कहते हैं ये टर्म के एग्जाम, छोटे छोटे क्या बोलते हैं इसको, असेसमेंट्स हैं, असेसमेंट है बोलती है। आप देख लिए कि आप कहाँ खड़े हैं और बहुत अच्छी तरह से अपने को खुद ही एग्जामिन कीजिए कि आप उसके लिए याद आप तैयार हैं कि नहीं है। दूसरे के ऊपर मत निर्भर रहिए, स्वयं देख लीजिए कि इस वक्त मेरे को क्या हो गया था। और अंत में आपको बता दूं एक छोटी सी बात कि जब कैमरा से फोटो निकालता है ना कोई, उसमें कितना टाइम लगता है बटन दबाने में? एक सेकंड भी नहीं लगता है, पक्का ना? और जब कैमरा वाला सामने कैमरा सेट करता है तब आपको क्या बोलता है, तैयार हो जाओ। और आप तैयार होते हैं, जितना आपसे सजना धजना जो कुछ करना है हो जाते हो ना, बाल भी ठीक करते हो, सब कुछ अपना ठीक करके बैठते हो। और उस वक्त एक और चीज वो आपको कहता है, क्या बोलता है, थोड़ा मुस्कुरा, स्माइल। आपको स्माइल कहता है और कहता मुख से स्माइल है, लेकिन वो देखता आपके चेहरे पे, हाथ उसका बटन के ऊपर जाता है और वो बटन दबता है। जिस वक्त उसने आपको स्माइल कहा और उसका हाथ बटन पे गया, उस वक्त एक मच्छर आके आपके नाक में घुस जाए तो आपका शक्ल कैसा होगा? बटन तो दब गया। अब जब वो प्रिंट आपको देगा तो आप उससे झगड़ा करेंगे ना, ये क्या बना दिया मेरे को? अब उसमें कसूर किसका, उसका कि आपका? मच्छर का। कैसा लगेगा उस वक्त हमारा चेहरा? ठीक इस प्रकार से अंत समय में जब बटन दबने वाला होता है तब हमारे दिमाग में जो चीज आती है वो हमारी शक्ल बन जाती है। इतना ही टाइम होता है और फिर हम कहते नहीं नहीं हमको ऐसे कैसे कर दिया, कैसे क्यों कर दिया, तुम्हारी शक्ल ऐसे बन गई, फोटोग्राफर का उसमें कोई कसूर है क्या? उसने तो बटन ही दबाया, शक्ल तो तुम्हारी जैसी थी वैसी आ गई। तो ऐसे भगवान के पास 84 लाख अलग अलग प्रिंट हैं, कौन सी प्रिंट आपकी उस वक्त निकलती है वो बटन दबाने के समय पता लगेगा। बटन दबा नहीं, कौन सी शक्ल आपकी बनी है वो प्रिंट तैयार हो जाएगी और फिर उसी प्रिंट के अनुसार जीना पड़ेगा। इसलिए उस वक्त अगर भगवान का चिंतन आया तो प्रिंट कैसी निकलेगी? स्वरूप्य, जैसा भगवान का रूप है ऐसा रूप हो जाएगा, उसको स्वरूप्य मुक्ति कहते हैं। वैसी शक्ल बन जाएगी, जिसका ध्यान किया उसकी शक्ल बन जाएगी, जिसका ध्यान किया उसी की शक्ल बन जाएगी। एक बार कहा मेरे को किसी ने पूछा कि आजकल आपके यहां तो पता नहीं, मुझे वैसे वो कह रहे थे यहां स्त्रियों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है बर्थ रेट के हिसाब से और मेल कम हो रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि 70% 60-40% ऐसे हो गया रेशो कि लड़कियां ज्यादा हो रही थी लड़के कम पैदा हो रहे थे। पूछा ये क्यों हो रहा है? तो इसका उत्तर तो बहुत सरल है। क्या उत्तर है? मरते समय सब स्त्री को याद करते हुए मरते, दूसरे जन्म में स्त्री बन के आ जाते। इसमें कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, बहुत सिंपल है। अंत समय जो याद आएगा वही बन के आना पड़ेगा। तो इसलिए अब किस चीज को लोग सोचते हैं वही बन के आना पड़ेगा। तो अब हम किसका चिंतन कर रहे हैं इसके ऊपर विचार करो कि हम किसका चिंतन कर रहे हैं। ये हमको कौन सिखाएगा कि अंत में किसका चिंतन आए? यही हम पढ़ रहे हैं, यही हम भगवद गीता का वचन पढ़ रहे हैं कि उस परीक्षा में पास होने के लिए हमको क्या अभ्यास करना पड़ेगा। वो अभ्यास करेंगे तब पास होंगे ना, वो अभ्यास हम कर रहे हैं क्या, तैयारी कर रहे हैं क्या? क्या हम तैयारी कर रहे हैं? ये अपने आप से पूछना चाहिए, आर वी प्रिपेयरिंग फॉर दी फाइनल एग्जामिनेशन? तो ग्रेजुअल रोज हम कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपने आप से पूछना चाहिए कि सिंसियरली आर वी प्रिपेयरिंग फॉर दिस दैट एग्जाम, फाइनल एग्जामिनेशन? जब जाना पड़ेगा तो कुछ तो साथ ले जाना पड़ेगा, उसके लिए भी कुछ तैयारी कर रहे हैं क्या? ये आप अपने सामने एक प्रश्न लुक के रखो, क्या हम तैयारी कर रहे हैं? क्या फाइनल एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं? क्या हमने कुछ कोचिंग का क्लास ज्वाइन किया है क्या? आजकल सारे एग्जाम के लिए कोचिंग क्लास की आवश्यकता है। किससे सीखते हैं? जो पहले परीक्षा के लिए तैयारी कर चुका है उसके बोलेंगे, भाई तुम बताओ कैसे करनी। अथवा ऐसा सिलेबस जिसके अंदर उसकी तैयारी की सारी गतिविधियां समझाई हुई है, उसके पास जाके उस कोचिंग क्लास को ज्वाइन हमने किया है क्या? क्या हम सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए। जो ये नहीं सोच सकता है वो इस जीवन में जी तो रहा है, खा तो रहा है और सुखी भी है, लेकिन परीक्षा में फेल हो गया तो आपने देखा, पता नहीं कोई स्टूडेंट जाते हैं कॉलेज में, गाड़ियों में चढ़ के जाते हैं, सब खर्चा करने के लिए, घूमने के लिए, उधर जाके घूमते फिरते हैं, कोई सिगरेट पीते हैं, लड़कियों के साथ घूमते रहते हैं, रिजल्ट जब आती है तब पता लगता है, साल पूरा घूमते हैं, सब बदमाशी करते हैं, लेकिन रिजल्ट में पास नहीं होते तब माँ बाप को पता लगता है। तो क्या हम ऐसे तो नहीं कर रहे हैं उन लड़कों की तरह, अपना टाइम बेकार यहां गंवा रहे हैं, रिजल्ट आएगी तब पता लगेगा? देखो कभी, प्रायः लोगों का हाल ये है। आजकल किसी ने मुझे कहा कि आप जाके कभी कॉलेज के बाहर खड़े होके देखो कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको आपके ग्रोन अप चिल्ड्रेन कॉलेज में जाते हैं वो क्या कर रहे हैं, आप कॉलेज के बाहर जाके खड़े होके देखो तो आपको पता लगेगा। आप सबको मालूम तो है ना क्या हो रहा है चारों ओर से, कोई इससे आपको ये छुपी हुई तो बातें नहीं है ना कि कॉलेज तो एक कैसे पास होंगे? जैसे वो बैठे ऐसे उन बच्चों की जगह पे आप देखो कि जो दुनिया में आप कर रहे हो, आपका और हमारा भी हाल वही है। हम भी वही भोग के अंदर दुनिया में कमाने के ऊपर घर दुकान मकान बनाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन परीक्षा की तैयारी कोई नहीं कर रहा है। सीरियसली सोचना चाहिए। और करते क्या है, कभी थोड़ा डर लगता है ना, तो चलो महाराज आए हैं इसको गुरु बना लेते हैं, अभी गुरु भुगता रहेगा, हम बैठ के यही धंधा वापस करते हैं, भार सारा गुरु के ऊपर डालने का प्रयास करते हैं। ये दूसरी एक टेक्निक चल पड़ी है, इसको ऐसे कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, हमारे को परीक्षा में कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? बोला हमारा है ना ऊपर एग्जामिनेशन में, हमारा आदमी है ना। अरे भाई तुमने पढ़ा है कि नहीं? बोला पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारा आदमी उधर है। तब उससे पूछना चाहिए, उस आदमी को भी परीक्षा देना पड़ेगी, उसने तैयारी की है क्या, पूछो जाके। ऐसे भी बहुत से लोग हमने देखे हैं जो कभी नहीं पढ़ते थे, वो कहते थे हमारा सोर्स है, हम पास हो जाएंगे। तो गुरु सोर्स नहीं है, गुरु टीचर है जो आपको तैयारी कराएगा। हमने गुरु को सोर्स समझ के रखा हुआ है कि हमारे को पास करा देगा। वो उस वक्त खड़ा होकर कहेगा इसको पास मत करना, ये मेरा स्टूडेंट है, इसने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, मेरा नाम बदनाम कर रहा था, क्योंकि भगवान का वो भक्त है, वो गलत काम नहीं करेगा, आप उसको यूज करने का प्रयास मत करना। तो ये तैयारी हमारी करना जरूरी कितनी है, आप थोड़ा सा विचार करके देख लो। एक दो सेकंड आपको देखता हूं कि आप सोच लीजिए कि आप पेरेंट होके बच्चों के लिए कितने स्ट्रिक्ट हैं कि वो परीक्षा की तैयारी करे, कितना खर्चा उसके ऊपर करते हैं, उसकी एजुकेशन का, उसकी ट्यूशन का, उसके किताबों का, कितनी आप मेहनत करते हैं कि वो एग्जाम में पास हो। तो क्या हम कुछ उसका 1% भी तैयारी कर रहे हैं क्या? अगर नहीं कर रहे हैं तो ये समझ लो कि वो बच्चे भी तैयारी ऐसी कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं, हमारी तैयारी को देख के वो भी तैयारी करेंगे। तो अब इसके ऊपर आप थोड़ा सोच के मुझे प्रश्न पूछिए कि क्या ये तैयारी हम कर रहे हैं। एग्जाम का डर लगता है सबको नहीं? एग्जाम, वर्ड एग्जाम इट्सेल्फ इज वेरी एंग्जाइटी ओरिएंटेड, दिमाग में एकदम चिंता होती है एग्जाम का सुनकर, है ना। एक एग्जाम इनका बुखार आता है मालूम है, कुछ बच्चों को बुखार आ जाता है एग्जाम से पहले। और पता है जो बीमार होते हैं मरने से पहले वो सब एग्जाम से डरते हैं, उनको बुखार आ जाता है, वो कच्चे हैं, उनकी तैयारी नहीं है। जिनकी तैयारी नहीं होती है वो बड़ा दुख भोगते हैं, वो जाने को तैयारी नहीं है। पुराने जमाने में एग्जाम के लिए स्कूल में बच्चे नहीं जाते, चार स्टूडेंट आते थे, दो हाथ से दो पांव से पकड़ के स्कूल में ले जाते थे। आपने देखा था कभी? नहीं, हमने ये भी जमाना देखा है। तो ऐसे जो तैयारी नहीं होती है ना वो डरते हैं, नहीं जाते। आपने देखा कभी बच्चा बोला आज नहीं जाऊंगा मेरे पेट में दर्द है? ठीक तरह से पूछोगे ना तो उसने होमवर्क नहीं किया होगा, तैयारी उसकी नहीं होगी, इसलिए वो ये ड्रामा करता है। तो ये ठीक हम भी ऐसे कर रहे हैं। ये बीमारी का बहाना क्या है? तैयारी नहीं है। तो तैयारी करने के लिए हमारे को चिंता भी नहीं है अभी तक। ये सत्संग आपको सिर्फ ये सुनाने के लिए, हो सकता है एग्जाम 50 साल के बाद आपको देना पड़े, फिर भी मैं एक पूछ लेता हूं आपको, एक प्रश्न आपके सामने रख देता हूं। 2008 के 25 तारीख को आज हम यहां सत्संग कर रहे हैं, दिसंबर 25 को, ये 25 दिसंबर 2008 हमारे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा, ये तो हमेशा के लिए गया। लेकिन 25 दिसंबर 2070 आएगा जिस दिन, हम में से कितने लोग इस दुनिया में होंगे? From now 62 years, अभी अपनी एज में 62 ऐड करके देख लो कितने लोग यहां रहेंगे, सोच लो, विचार कर लो। 1970 भी आप में से देख लो, कुछ लोगों ने देखा कि नहीं देखा? 1971, 1972, 1973, 1974 देखा, 78 देखा कि नहीं देखा? देखा होगा कुछ लोगों ने, जो 40 के बराबर है उन्होंने देखा होगा, सबने जन्म हुआ है उनका। तो 2070 दिसंबर कितने लोग हम में से देखेंगे, जरा विचार कर लो। 62 ऐड करो अपनी जो भी एज है उसमें, कितने लोग बचेंगे? इधर ऊपर उठो, कितने, क्या उम्र क्या है बेटी तुम्हारी अभी? 9 और 62 कितना हुआ? 71, उस वक्त ये 71 की होगी। अभी कोई 71 का है हमारे यहां? दादा क्या उम्र है दादा? 80। बेटी उस वक्त तुम्हारी शक्ल ऐसी होगी, वो देखो दादा है वैसी, अभी ऐसे लग रहा है, उस दिन ऐसे हो जाएंगे हम। देख बाबा आए थे, देखा था? कभी कभी एक बुढ़िया थी बेचारी, चल नहीं सकती थी, टेढ़ी हो गई थी, लाठी से चलती थी। तो ऐसी लड़कियां थी ना, उसको देख के हंसती थी, ये बुढ़िया देखो टेढ़ी। तो पूछे क्या ढूंढ रही हो, मजाक करते देख के, माँ क्या ढूंढ रही हो? और देखती बोले बेटी मेरी जवानी के उम्र के साल यहाँ गुम हो गए हैं, उनको ढूंढ रही हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसी थी, वो ढूंढ रही हूँ कहाँ गए, तुमको भी एक दिन ऐसे डंडा उठाना पड़ेगा। तो उस वक्त बेटी 72 ईयर्स, समझ गई? अरे कृष्णा बैठो 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 ये 72 की हुई तो बाकी बताओ हमारा क्या हाल होगा? चंचलक्षी सुनाओ क्या समाचार होगा? हाँ डेफिनेटली नहीं होंगी। कितने लोगों ने ये निर्णय किया कि डेफिनेटली नहीं होंगे? डेफिनेटली अब ये सबका हाथ ऊपर है कि इतने हम लोग नहीं होंगे। तो क्या हमने तैयारी की है क्या? क्या हम तैयारी कर रहे हैं क्या? तो हमको सावधानी से तैयारी करनी चाहिए ना। वी शुड बी सीरियस, वेरी सीरियस। इतना हमारे को सावधान होना चाहिए कि हमारी तैयारी बहुत, जैसे बच्चों का टाइम टेबल है ऐसे जीवन में टाइम टेबल बना लो। घर चलाने का टाइम टेबल देखो, आपको 8 घंटे शरीर चलाने के लिए भगवान ने दिए, सो जाओ 6 घंटे आराम करो, 7 घंटे आराम करो, 1 घंटा नहा लो, भोजन कर लो, कपड़े बदल लो, और थोड़ा लेजी हो तो 1 घंटा और आपको दे देते हैं, 9 घंटे आपको दिया, 8 घंटे आपके पास हैं कारोबार धंधा करने के लिए। कितने बजे लोग काम पे जाते हैं घर में? कितना 8 घंटे से ज्यादा काम तो नहीं है ना घरों में? मैक्सिमम 8 घंटे का काम है, इससे ज्यादा तो काम नहीं है ना। दुकानदार जाते हैं कितने? 9 बजे जाते हैं, 9-10 बजे जाते हैं। कितने बजे जाते हैं दुकानों पे? 9 बजे जाते हैं और वापस 9 बजे आते हैं, 12 घंटे। हाँ तो तुम वही मैक्सिमम 8+1 समझ लो काम के लिए है, और कोई बहुत लोभी लालची है तो एक घंटा और बैठा रहेगा, कोई मना धरा आ जाए अचानक, वो लोभी लालची में आता है। लेकिन स्टैंडर्ड ये, बाकी 6 घंटे जो आपके पास बचते हैं उसमें से दो घंटे इस तैयारी के लिए है। हर एक को ये 2 घंटे तैयारी के लिए निकालने चाहिए और भगवान के बारे में सुनना चाहिए और भगवान का ऐसा नाम याद करने का अभ्यास करना चाहिए कि अचानक वो ही नाम निकले मुख से। और दुनिया में ऐसी कभी भी कोई थोड़ी सी भी ऐसी स्थिति आए तो देखना चाहिए कि मेरे को क्या निकला मुख से। और 2 घंटे आपके लिए है शरीर को ठीक रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 2 घंटे हैं। उसके लिए भी कुछ करना चाहिए, चलना फिरना, कुछ कोई व्यायाम करना। अभी अभी तो रोटी बनाना छोड़ दी माताओं ने, उसमें आटे गूंदने में जोर लगता है, थोड़ा सा मेहनत होती है, फिर रोलना, ये फिजिकल एक्सरसाइज है। अभी वो खबूस आ गया, क्या खबूस का मतलब क्या है कि हम काम नहीं करेंगे। ये हमारी बेसिकली हमारी लेजीनेस की निशानी है। रोटी ताजी बनाओगे तो थोड़ा शरीर काम करेगा, मेहनत होगी, और मेहनत होगी तो शरीर ठीक रहेगा। तो कुछ थोड़ा सा शरीर के लिए भी परिश्रम करना चाहिए। और 1.5-2 घंटे आपके बच्चों की देखभाल के लिए है। बच्चों को टाइम नहीं देते हैं आप लोग, देख लीजिएगा, कमाते हैं बच्चों के लिए लेकिन बच्चों के साथ बैठ के बात करने का टाइम नहीं है। ये बच्चे जैसे छोटे पढ़ रहे हैं ऐसे आपको 1-2 घंटे बच्चों को ये सिखाना चाहिए, या जहां सीखते हैं वहां भेजना चाहिए, और जब सीख के आए तो उनसे सुनना चाहिए और उनका एप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। तो क्या हम ये काम कर रहे हैं, क्या कितना टाइम बच्चों को दे रहे हैं? कल परसों हम कहीं चर्चा कर रहे थे, 2 साल के बच्चे को नर्सरी में छोड़ के आने का मतलब है कि बच्चे हम पाल नहीं सकते, उसको हम प्रेम दे सकते हैं। जब उसको प्रेम की जरूरत है हम नहीं दे सकते। पुरानी नर्सरी पता है क्या थी हमारे जमाने की? हमारी दादी हमारी नर्सरी हुआ करती थी, बच्चा दादी की गोद में, नर्सरी दादी की गोद में हुआ करती थी, सब संस्कार उसकी गोद में सीखता था, कहानियां ये श्लोक ये दादी सिखाया करती थी। देट वॉज अवर नर्सरी। जब से हमने दादी को क्रॉस कर दिया तब से ये नर्सरी पैदा हो गई, वो हमारी नर्सरी हुआ करती थी। और वो दादी बेटे से पोते को ज्यादा प्यार करती थी। तो ये फिलिपिनो क्या आपके बेटे को प्यार करती होगी वहां? हाँ, तो तनख्वाह मिलता है इसलिए देखभाल करती हैं। तो दादी की ऐसे थोड़ी पढ़ गई, तो वो नर्सरी खत्म हो गई। देख लीजिए ये सब कुछ हमारे हमारी तैयारी में बहुत रुकावट पड़ी। बच्चों को हम टाइम नहीं दे पा रहे क्वालिटी। वही 5 साल होते हैं बच्चे और पेरेंट के बीच में एक रिश्ता डेवलप होता है, प्रेम का जो संबंध पेरेंट्स में और बच्चों में होता है ये 5 साल में होता है। पहले वो 5 साल ही जब उनको प्रेम की जरूरत है तब हम उनको देख नहीं सकते, और उसका रिजल्ट क्या होता है आगे चल के वो बच्चे हमारी बात नहीं सुनते और हमारी इच्छाओं के अनुसार कुछ करने को तैयार नहीं है, उनकी अपनी मर्जी से कुछ करेंगे और कहेंगे एक आए दिन आपने कौन सा आपने हमको पाला था, छोड़ के आए दे रहे वहां, और कहने लगते हैं ऐसे बच्चे। तो ये आपके 2 घंटे उस तैयारी के लिए भी है कि बच्चों को भी आपको तैयार करना है, दूसरा कोई नहीं करेगा। जो आप प्रेम बच्चों के देंगे वो दूसरा कोई नहीं देगा। इस उम्र में बच्चों को प्रेम की स्नेह की जरूरत है। तो 2 घंटे रोज तैयारी के लिए जो तैयार है वो इस एग्जाम में पास होगा, और इसको इस एग्जाम में बैठने का अधिकार है। दूसरा इस एग्जाम में बैठ ही नहीं सकता है, वो तो नीचे लेवल पे अपने आप प्रोमोशन में चला जाएगा, दूसरी किसी क्लास में घूम के वापस आ जाएगा। तो हमको सीरियसली तैयारी करनी चाहिए। ये भगवान के वचन है, 2 घंटे रोज निकालो, निश्चित रूप से ये अभ्यास करो कि अंत समय हमारे मुख से भगवान का नाम उच्चारण हो जाए। और ये जपते रहेंगे तो हमारी आदत हो जाएगी, और ऐसी आदत हो जाएगी कि सोए हुए नींद में भी अचानक कभी आपके मुख से आवाज निकला तो भगवान का नाम निकलेगा। अगर ये आपका अभ्यास हो गया पक्का हो गया। तो कई लोग हमको ऐसे मिलते हैं कि रात हम कहीं रहते हैं साथ, भक्त बोलते हैं रात सारी रात आपके मुख से राम राम निकल रहा था, सारा दिन यही करते हैं तो रात को ये निकलेगा, नहीं तो रात जो जो सारा दिन करते हैं वही रात को निकलेगा। एक दुकानदार था, वो कपड़े का दुकानदार, रात को सोए सोए कहता 3 मीटर देना है, ले 3 मीटर, पूरा अपना धोती फाड़ दिया। सुबह उठा, मेरा कपड़ा किसने फाड़ा है? अरे बोला किसने क्या, तुम नहीं रात फाड़ा है अपना कपड़ा, ऐसे खींच रहा था सारी रात, सारा दिन जो 3 मीटर करेगा तो कपड़ा ही फाड़ा तो अपना ही फाड़ दिया, और क्या करेगा, जो सारा दिन जो प्रैक्टिस जिस चीज करेगा वही रात को आएगा ना, वही जीवन में बात आएगी ना। इसलिए अभ्यास करो, तैयारी करो। टाइम परीक्षा का आएगा, सबके लिए आएगा, इस परीक्षा से कोई भी अपने आप को एग्जेम्प्ट नहीं कर सकता, नो एग्जेम्प्शन, ओनली हार्ड वर्क एंड सीरियसनेस विल मेक अस सक्सेसफुल इन दिस एग्जाम। और पता नहीं इसका एग्जामिनर कौन है, नाम सुनते ही डर लगता है, यमराज, इसका एग्जामिनर यमराज है। और ऐसा भी एग्जामिनर नहीं है कि उसको पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, उसका हर एक के साथ एक CID एजेंट है और उसका नाम है चित्रगुप्त। और चित्रगुप्त का पता है क्या है? अंग्रेजी में ट्रांसलेशन क्या है, सीक्रेट फोटोग्राफर। चित्र मीन्स फोटो, गुप्त मीन्स सीक्रेट। वो आपके जीवन की पूरी रील बना रहा है और एक्शन रीप्ले करेगा एग्जाम के समय के, देखो तुमने क्या किया था। यहां देखो कितने आप सावधान हो जब गाड़ी चलाते हो, वो इधर से कैमरा है हमारी, गाड़ी का नंबर आ जाएगा, गाड़ी के कैमरा के नंबर से डरते हो कि नहीं डरते हो या गाड़ी चलाते हो? तो चित्रगुप्त की कैमरा इससे ज्यादा सख्त है, उसमें मिस हो नहीं सकता है कुछ भी। अब तो आपके दो पोल के बीच में कितनी स्पीड है उसका भी नई कैमरा लगे। चित्रगुप्त तो आप सोचते क्या है उसका भी फोटो निकलता है, किया क्या है वो तो फोटो तो तैयार ही होता है, प्रिंट निकलेगी, लेकिन जो नहीं किया उसकी भी वेव्स दिखाएगा कि यहां तुमने ये सोच रहे थे। और वो सब एक्शन रीप्ले करके आपको दिखाया जाएगा अगर नहीं मानोगे तो, कि देखो तुमने किया है कि नहीं किया है। इसलिए अंत समय मरते हुए लोगों को दिखाए, बहुत दुखी होते हैं ऐसे, क्योंकि फिल्म उस वक्त तो दिखाता रहता है और अपना हाल देखते हैं, बोला मैंने ये किया है, अरे नहीं नहीं नहीं, तो वो हंसता है, बोलता तुम्हें याद नहीं है, देखो तुम्हारे को डेट दिखाऊं क्या, तुम्हारा नंबर दिखाऊं कौन सा था उस दिन गाड़ी का तुम्हारा, बिल्कुल परफेक्ट अरेंजमेंट उसके पास है। तो ये एग्जामिनर ऐसा है कि उससे मिस नहीं किया जा सकता, इसलिए तैयारी अच्छी होनी चाहिए, सीरियसनेस होनी चाहिए, डरो मत, तैयारी करो और उत्साह के साथ तैयारी करो कि वी विल पास विदाउट एनी हाइंड्रेंस, क्योंकि हमको रास्ता मिल गया है। हमको ऐसी प्रभुपाद हैज एक्चुअली ओपन ए बिग यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड वाइड, प्रभुपाद ने एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय खोला है पूरी दुनिया में कोचिंग का। आइए तैयारी कीजिए, परीक्षा में कभी कभी कुछ एग्जाम क्या लिखते हैं, देखें कुछ लिखते हैं ना स्कूल अपना, सक्सेस गारंटेड, जॉब सिक्योरिटी, हमारे पास पढ़ोगे तो जॉब की सिक्योरिटी है और सक्सेस गारंटेड है, और फिर क्या लिखते हैं, और 100% प्लेसमेंट के बाद भी एक चीज लिखते हैं, देखो इससे पहले ये पास हो गए हैं, आपने उनके फोटो पढ़े होते हैं। तो ये अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर 100% रिजल्ट है, 100% प्लेसमेंट है, लेकिन एप्लीकेशन रोज लिखनी पड़ेगी। जब तक जीते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एप्लीकेशन है बेसिकली। रोज भगवान हमें अपनी सेवा में लगाओ, हमारी प्लेसमेंट कर दो, ये एप्लीकेशन है। इस मंत्र का अर्थ है कि हमको अपनी सेवा में लगाओ, लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है। प्रायः लोग जाते हैं बास के बाद, बास का मूड ठीक नहीं है तो नहीं देता है नौकरी, लेकिन पुराने जमाने में बुद्धिमान लोग बास की जो बास होता है, बास का बास कौन है, होम मिनिस्टर, माता जी बांस का बांस होती है, घर से निकलता है तो बेचारा बांस के बांस से आज्ञा लेके निकलता है, और जिसने उसके पास जाके एप्लीकेशन दे दी वो उसकी नौकरी पक्की। तो ये हरे बांस के बांस को एड्रेस है, हरे का मतलब हरि को हरण करने वाली। तो ये एप्लीकेशन इतनी परफेक्ट है और ये इंस्टीट्यूट इतना वेल रेप्यूटेड है, और लास्ट 40 ईयर से इसकी रिजल्ट बहुत अच्छी है। हम इसलिए अच्छी कहते हैं कि कुछ लोग 25 साल तक रहे, फिर चले गए दुनिया के अंदर, फिर दुनिया में धंधा कारोबार किया, लेकिन हमने देखा है अंत समय वो वापस वृंदावन में कैसे भी आ गए, और शरीर छोड़ने से पहले 10-20 भक्त उसके चारों ओर बैठे और देखा कि इसको कैंसर है, ये आखिरी है, तो 24 घंटे 48 घंटे कीर्तन कर रहे हैं भक्त, जब तक वो प्राण नहीं छोड़ता है तब इतने लोग उनके साथ बैठे होते हैं। हमने ये आंखों से देखे हैं 10-20 ऐसे जो पास होते हुए हमने देखे, इसलिए पास होते हुए देखे कि उन्होंने पहले तैयारी की थी तो दूसरे उनकी सहायता अंत समय में करते। तो ये 40 साल से रेप्यूटेड हमारा इंस्टीट्यूट है, जो इसको नए तरह से लॉन्च किया है वर्ल्ड वाइड लेवल पे, लेकिन 500 साल से पहले ये चलता आ रहा था भारत में, और 5000 साल से श्री कृष्ण ने इसको स्वयं भगवद गीता के रूप में इस्टेब्लिश किया है, और बहुत से इससे पहले भी गुरुजन प्रोफेसर के रूप में इसको सिखा के गए हैं। तो हमारी फ्री एडमिशन भी है, कोई फी नहीं है एजुकेशन, ये एजुकेशन की कोई फी नहीं, जस्ट फ्री एंट्री फी, नो एंट्री फी, नो कोचिंग फी, फ्री, क्योंकि ये एग्जाम की तैयारी करना अपने आप में बहुत बड़ा एक व्हाट इज कॉल्ड टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर द फाइनल एग्जाम इन इटसेल्फ ए ग्रेटेस्ट रिकॉग्निशन बाय द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान उसी को रिकॉग्नाइज करता है कि ही इज डूइंग द जॉब। ये भगवद गीता का श्लोक है, मेरी गीता के उपदेश जो दूसरों को सिखाता है उससे ज्यादा न कोई कभी मुझे प्रिय हुआ है पास्ट में, न भविष्य में कोई होने वाला है। ही इज ओनली द मोस्ट डियर टू मी, ओनली बाय नोइंग दिस वन वर्स ऑफ भगवद गीता थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ टू कोच फ्री फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल एग्जाम फॉर द जनरल पीपल ऑफ दिस प्लानिट। दुनिया के कोने कोने में हम ये तैयारी के स्कूल खोल के रखे हैं, आइए मुफ्त में फ्री निःशुल्क एजुकेशन लीजिए, तैयारी कीजिए, पास की गारंटी। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा बीबी, कैसे है? ठीक है, क्या नाम है? निधि, रितिका, रितिका कह रहा सोनिया, क्यों नहीं बताएगी? माता जी बात अभी से नहीं मानती है, क्यों? तुम्हारे को नर्सरी में भेजा था क्या? हाँ नहीं भेजा था तो बताओ, भेजा था। हाँ उसको बोलो, मेरे को मत बोलो। जब तुम कितनी थी बेटी जब गई थी उधर? रोती थी? वो अभी फोटो पूछूंगा ऊपर से, उसका फोटो होगा तैयार होगा उसके पास, चित्रगुप्त के मंगाए क्या? रोई थी कि नहीं रोई थी? चल बताओ श्लोक बताओ। गुड गर्ल, गुड गर्ल, जल्दी करो। एक शाबाश, कम 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 कम, कौन सा बताओगी ये बाद में बताना, पहले बताओ बाद में बताना कौन सा बताना। कॉपी करना आलो नहीं है। बोलिए बोलिए, वेरी गुड, इसमें बोलिए। किसी को कोई प्रश्न है क्या? एनी बड़ी क्वेश्चन? अपर बोलो बोलो बेटी बोलो। नहीं क्वेश्चन है?